नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। ईरान ने कहा, संघर्ष विराम उल्लंघन के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खोला जा सकता। अमरीकी नौसेना सचिव जॉन फेलन ने ट्रंप प्रशासन से इस्तीफा दिया। ब्रिटेन में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित। लॉस एंजल्स स्कूलों में स्क्रीन टाइम सीमित करने वाला विश्व का पहला जिला बना। और महिला क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका ने जोहानिसबर्ग में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 9 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। ईरान ने कहा है कि अमरीका और इसराइल द्वारा संघर्ष विराम उल्लंघन के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खोला जा सकता। ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकर कलिबाफ ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि संघर्ष विराम उल्लंघनों में ईरान के बंदरगाहों की अमरीकी नौसैनिक नाकाबंदी भी शामिल है। ईरान के मुख्य वार्ताकार ने इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था को बंधक बनाने और इसराइल द्वारा हर मोर्चे पर युद्ध भड़काने के बराबर बताया। एक रिपोर्ट।
ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिशियन ने कहा है कि ईरान वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन, नाकाबंदी और धमकियां वार्ता में मुख्य बाधाएं हैं। अमेरिका और ईरान के बीच इस सप्ताह पाकिस्तान में संभावित शांति वार्ता अभी तक शुरू नहीं हो सकी है। मंगलवार रात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका ईरान संघर्ष विराम को बढ़ाने की घोषणा की थी। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लिविट ने बाद में स्पष्ट किया कि संघर्ष विराम विस्तार अनिश्चितकाल के लिए है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के खिलाफ जारी अमरीकी नौसैनिक नाकाबंदी से संतुष्ट हैं। उनका मानना है कि ईरान बहुत कमजोर स्थिति में है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तनावपूर्ण गतिरोध पिछले कुछ घंटों में और गहरा गया है। ईरान की नौसैनिक नाकाबंदी तेज हो गई है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा है कि उसने 2 मालवाहक जहाजों को जब्त कर लिया है। समुद्री निगरानी एजेंसियों ने यह भी बताया है कि ओमान के तट के पास एक तीसरे जहाज पर गोलीबारी की गई। उधर वाशिंगटन में व्हाइट हाउस ने संकेत दिया है कि ईरान के साथ 2 सप्ताह के युद्ध विराम समझौते की समाप्ति के बावजूद वो अपनी इस क्षेत्र में नौसैनिक उपस्थिति बनाए रखेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि अगले 72 घंटों के भीतर बातचीत फिर शुरू हो सकती है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन, नाकाबंदी और धमकियां वास्तविक बातचीत में मुख्य बाधाएं हैं। अमरीकी नौसेना सचिव जॉन सी फेलन के ने इस्तीफा दे दिया है। हंग काओ कार्यवाहक नौसेना सचिव के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता शॉन पार्नेल ने इसकी पुष्टि की और फेलन को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दिया। ये घोषणा ऐसे समय में हुई है जब अमरीकी नौसेना युद्ध विराम के दौरान ईरानी बंदरगाहों पर नाकाबंदी लागू कर रही है। इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संभावित बातचीत में सफलता का संकेत दिया है। हालांकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में बढ़ते तनाव से क्षेत्र में संघर्ष विराम टूटने का खतरा मंडरा रहा है। दक्षिणी लेबनान पर हुए इसराइल के हवाई हमले में मारे गए लेबनानी पत्रकार का शव मलबे से निकाल लिया गया है। दैनिक अल अखबार ने पुष्टि की है कि दक्षिणी गांव अल तिरी पर हुए हमले में उसकी पत्रकार अमल खलील मारी गई। सूचना मंत्री पॉल मोरकोस ने भी खलील की मौत की पुष्टि की है। खलील अक्टूबर 2023 में शुरू हुए इसराइल इस्बुल्ला युद्ध को कवर कर रही थी और दक्षिणी लेबनान के विभिन्न हिस्सों से रिपोर्टिंग कर रही थी। यूरोप की बड़ी एयरलाइन कंपनी लुफ्थांसा एयरलाइंस ने अक्टूबर तक 20,000 छोटी दूरी की उड़ानें रद्द करने का फैसला किया है। कंपनी ने यह निर्णय ईरान युद्ध के कारण तेल की बढ़ती कीमतों और कुछ देशों में जेट ईंधन की कमी की बढ़ती चिंताओं के मद्देनजर लिया है। लुफ्थांसा समूह ने कहा है कि मुख्य रूप से जर्मनी के फ्रैंकफर्ट और म्यूनिख शहरों में स्थित प्रमुख हवाई अड्डों पर केंद्रित कम मुनाफे वाले मार्गों की उड़ानें रद्द करने से लगभग 40,000 मीट्रिक टन जेट ईंधन की बचत होगी। लागत कम करने के लिए कंपनी ने पिछले सप्ताह अपनी एक क्षेत्रीय सहायक कंपनी सिटीलाइन को बंद कर दिया था। मौजूदा जारी पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जेट ईंधन की कीमतें दोगुनी से अधिक हो गई हैं। विश्व दर्पण आकाशवाणी से प्रसारित किया जा रहा है। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ब्रिटेन की संसद ने तंबाकू और वेप्स विधेयक पारित किया है। इसके अंतर्गत 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति को सिगरेट बेचना प्रतिबंधित कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
इसका उद्देश्य धूम्रपान मुक्त पीढ़ी का निर्माण करना और सार्वजनिक स्थानों पर वेपिंग को विनियमित करना है। संसद में तंबाकू और वेप्स विधेयक पारित होने के बाद 17 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चों पर सिगरेट खरीदने पर प्रतिबंध रहेगा। इससे धूम्रपान मुक्त पीढ़ी के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा स्वीकृत ये विधेयक शाही मंजूरी मिलते ही लागू हो जाएगा। ये कानून धूम्रपान के स्वास्थ्य प्रभावों को दूर करने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है जो ब्रिटेन में रोकी जा सकने वाली मृत्यु, विकलांगता और बीमारी के प्रमुख कारणों में से एक है। इसके अलावा बच्चों को ले जाने वाली कार, खेल के मैदानों और स्कूल तथा अस्पतालों के बाहर के क्षेत्रों सहित कुछ सार्वजनिक स्थानों पर वेपिंग प्रतिबंधित होगी, जिससे मौजूदा धूम्रपान मुक्त नियमों का विस्तार होगा। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
अमेरिका में लॉस एंजल्स के शिक्षा बोर्ड ने कक्षाओं में विद्यार्थियों के स्क्रीन टाइम को सीमित करने के लिए मतदान किया है। ऐसी पहल करने वाला ये पहला प्रमुख अमेरिकी स्कूल सिस्टम बन गया है। एक रिपोर्ट।
इस प्रस्ताव के तहत कर्मचारियों को कक्षा के स्तर पर स्क्रीन टाइम नीतियां विकसित करनी होंगी और पहली कक्षा और उससे कम उम्र के विद्यार्थियों के लिए उपकरणों का उपयोग प्रतिबंधित है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब लगभग 5 लाख विद्यार्थियों को सेवाएं प्रदान करने वाला यह जिला कोविड महामारी के कारण टैबलेट और लैपटॉप पर अपनी निर्भरता कम करने का प्रयास कर रहा है। प्रस्ताव में शोध का हवाला दिया गया है। इस शोध में बताया गया है कि 8 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे जो स्क्रीन टाइम दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हैं उनमें मोटापा और अवसाद के लक्षणों का खतरा अधिक होता है और संज्ञानात्मक मूल्यांकन में उनके अंक कम आते हैं। यह जिले द्वारा 2024 में पारित एक उपाय के बाद आया है जिसमें कक्षा में मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
पाकिस्तान में प्रमुख मानवाधिकार संगठनों ने कहा है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने एक महिला सहित 4 नागरिकों को जबरन गायब कर दिया है। बलूच राष्ट्रीय आंदोलन के मानवाधिकार विभाग ने नर्सिंग की छात्रा खदीजा बलूच को जबरन गायब किए जाने की कड़ी निंदा की है। बलूच वॉयस फॉर जस्टिस ने कहा है कि यह घटना उस प्रवृत्ति को दर्शाती है जिसमें बलूच महिलाओं को जबरन गायब किए जाने, डराने धमकाने और गैर कानूनी हिरासत में लिए जाने जैसी घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं के मौलिक अधिकारों और उनकी सुरक्षा का हनन हो रहा है। भगवान बुद्ध के पवित्र तथागत अवशेष केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की यात्रा पर ले जाए जा रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में तथागत बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी के शुभारंभ अवसर पर कहा कि भारत में पहली बार भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष जो अपने मूल स्थान पर संरक्षित हैं सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए लाए जा रहे हैं। और अब खेल जगत की खबरों के लिए रुख करते हैं मुकेश कुमार बल का।
जी विशाल, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं घरेलू क्रिकेट से। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स ने कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स को 40 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स के 160 रन के लक्ष्य के जवाब में लखनऊ की टीम 18 ओवर में सिर्फ 119 रन ही बना सकी। रविंद्र जडेजा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज मुंबई इंडियंस का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मुंबई में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की तो जोहान्सबर्ग में खेले गए तीसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में कल भारत को दक्षिण अफ्रीका से 9 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 192 रन बनाए। 193 रन का लक्ष्य दक्षिण अफ्रीकी टीम ने 16 ओवर और 3 गेंद में 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत फिलहाल 3-0 से पीछे है। जी विशाल, खेल जगत से बस आज इतना ही।
और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ईरान ने कहा संघर्ष विराम उल्लंघन के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खोला जा सकता। अमरीकी नौसेना सचिव जॉन फेलन ने ट्रंप प्रशासन से इस्तीफा दिया। ब्रिटेन में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित। लॉस एंजल्स स्कूलों में स्क्रीन टाइम सीमित करने वाला विश्व का पहला जिला बना। और महिला क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका ने जोहान्सबर्ग में खेले गए तीसरे टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 9 विकेट से हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।